जहां अमेरिका नाटो छोड़ देगा। नमस्कार मित्रों, मैं स्टीव दुपुई डॉक्टर बॉब थील के साथ बाइबल न्यूज प्रोफेसी प्रोग्राम में बाइबल की भविष्यवाणियों के आलोक में विश्व घटनाओं का समाचार और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर थील, नाटो से अमेरिका के बाहर निकलने की धमकी हकीकत बनने के कितने करीब है?
पिछले हफ्ते केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने नाटो से अमेरिका की औपचारिक वापसी के लिए एक विधेयक पेश किया। वहीं सीनेट में सीनेटर माइक ली भी यही प्रस्ताव रखना चाहते हैं। विधेयक में तर्क दिया गया है कि नाटो का गठन एक ऐसे सोवियत संघ को गिनने के लिए किया गया था जिसका अब अस्तित्व ही नहीं है, और हमें नाटो से हटकर उस धन का उपयोग अपने देश की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि समाजवादी देशों की रक्षा के लिए। और मूल रूप से मैसी के अनुसार हमें उन धनी देशों के लिए सुरक्षा कवच नहीं बनना चाहिए जो अपनी रक्षा के लिए भुगतान करने से इनकार करते हैं। अब इस नाटो अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को संधि के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नाटो को औपचारिक रूप से वापसी की सूचना देनी होगी, और मूल रूप से यह कहा गया है कि हम इसे विस्तारित नहीं होने देना चाहते। और दिलचस्प बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में एक खबर सामने आई। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि यूरोप 2027 तक नाटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं, खुफिया जानकारी से लेकर मिसाइलों तक का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। यह बात वॉशिंगटन में पेंटागन के कर्मचारियों और कई यूरोपीय प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक में कही गई। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में मैं ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ। उद्धरण: वे दिन समाप्त हो गए हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका एटलस की तरह पूरी विश्व व्यवस्था को सहारा दे रहा था। हमारे कई सहयोगियों में दर्जनों धनी विकसित राष्ट्र शामिल हैं जिन्हें सामूहिक रक्षा में अधिक योगदान देने के लिए अपने अपने क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने हेग समझौते के साथ एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है जिसके तहत नाटो देशों को सकल घरेलू उत्पाद का 5% खर्च करने का वचन दिया गया है। आगे कहा गया है, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सहयोगियों से इन क्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह करने के दृष्टिकोण को देखते हुए यूरोप के लिए हमारी व्यापक नीति को यूरोप के भीतर स्थिरता की स्थिति को पुनः स्थापित करने और नाटो को एक निरंतर विस्तारशील गठबंधन के रूप में देखने की धारणा को समाप्त करने और वास्तविकता को रोकने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब मैं जर्मन राजनीतिक दल AfD के सदस्य एलिस विडेल की टिप्पणी पढ़ना चाहता हूँ। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह मांग करते हैं कि जर्मनी को भविष्य में अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, तो उन्हें इसके पूरे परिणामों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। हम उनकी चिंताओं को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन हम अपने फैसले खुद लेंगे और उन्हें ये फैसले स्वीकार करने ही होंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो।
क्या जर्मनी द्वारा अपने स्वयं के निर्णय लेने और अमेरिका को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होने के कोई परिणाम होंगे?
जी हाँ, देखिए, यूरोपीय रक्षा आयुक्त अंद्रियास कुबिलिस ने कहा कि यूरोप को अपना रास्ता खुद तय करना होगा। हमें रक्षा क्षमताओं के साथ साथ भू राजनीतिक स्थिति में भी अधिक स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्स ने नाटो में यूरोप की भूमिका को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मेर्ट्स ने कहा कि यूरोपीय संघ के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति के जवाब में एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम एक एकजुट और मजबूत यूरोप के रूप में ऐसा करेंगे। दबाव में भी इस यूरोप को एकजुट रखना और किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति द्वारा विभाजित न होने देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें पहले से कहीं अधिक एक एकजुट मजबूत यूरोप की आवश्यकता है।
चांसलर मेर्ट्स ने यूरोप की एकता का मुद्दा उठाया। क्या ये एक जायज चिंता है?
हाँ, अब जैसा कि हम नाटो की एकजुटता में दरारें देख रहे हैं, यह यूरोप को अधिक एकता की ओर धकेल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में यूरोपीय देशों को टूटते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रंप या इस नवीनतम नीति मंच की परवाह नहीं है। और मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनपेक्षित परिणाम और डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल, जो cogwriter.com पर मुफ्त में उपलब्ध है, और मैं इसमें से कुछ चीजें पढ़ने जा रहा हूँ। इतिहास में कई शक्तिशाली सभ्यताएं आर्थिक, सैन्य, स्वास्थ्य और नैतिक पतन के कारण नष्ट हो गईं। नाटो जैसे गठबंधनों का क्या? बाइबल विलाप गीत में सिखाती है कि एक महान शक्ति अपने ही मित्रों द्वारा नष्ट हो जाएगी जो उसके शत्रु बन जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान नाटो सहयोगियों को शत्रु बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से लोग यह नहीं समझते कि जब यूरोपीय अपनी सेनाओं पर अधिक खर्च करेंगे तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक स्वतंत्रता की अपेक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के उदय ने यूरोपीय लोगों को आपस में और अधिक एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है। दानियल की पुस्तक का अध्याय 11 विभिन्न नेताओं पर चर्चा करता है, जिनमें उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के रूप में जाने जाने वाले नेता भी शामिल हैं। उत्तर के राजा के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह तब उठेगा जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, जिसका अर्थ है कि जब परमेश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बढ़ती अनैतिकता से तंग आ जाएगा। उत्तर का राजा वे काम करेगा जो उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से न करने का वादा किया था, और बाइबल के अनुसार वह छल का प्रयोग करेगा। और मैं यहां दिए गए धर्मग्रंथों का हवाला दे रहा हूं, दानियल 11:21, वह शांतिपूर्वक आएगा और षड्यंत्रों से राज्य पर कब्जा कर लेगा। अब दानियल 8:23, उसके राज्य के अंतिम समय में एक क्रूर चेहरे वाला राजा उठेगा। वह कुटिल योजनाओं को जानता है, उसकी शक्ति विशाल होगी परंतु उसकी अपनी शक्ति से नहीं। वह भयानक रूप से विनाश करेगा और समृद्ध होकर संघर्ष करेगा। वह बलवान और पवित्र लोगों को नष्ट कर देगा। धूर्तता से वह अपने शासनकाल में छल को फलने फूलने देगा। वह अपने हृदय में अहंकार करेगा। वह बहुतों को उनकी समृद्धि में नष्ट कर देगा। और आगे पुस्तक कहती है, उत्तर का राजा धोखे से शांति और सुरक्षा की घोषणा करेगा, जबकि वह अपने विरोधियों के अचानक विनाश की साजिश रच रहा होगा। वह शक्तिशाली अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन को नष्ट कर देगा, क्योंकि उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों को स्वीकार और समझा नहीं है। कई राजनीतिक और अन्य नेता झूठी शांति की आशा और विश्वास कर रहे हैं। अचानक होने वाले विनाश में परमाणु और अन्य उच्च तकनीकी हमले शामिल होंगे, जो संभवतः नाटो के प्रशिक्षण या अन्य अभ्यास के साथ हो सकते हैं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके एंग्लो सैक्सन सेल्टिक सहयोगियों अचंभित रह जाएंगे। अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। विलाप गीत 1:1-2 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पर उसके मित्र ही हमला करेंगे।
आपने दानियल की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा, उत्तर का राजा कुटिल योजनाओं को समझ जाएगा। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का विनाश उन कुटिल योजनाओं में से एक माना जा सकता है?
हाँ, और एक समय ऐसा आएगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नाटो या अन्य समझौते यूरोपियों को सार्वजनिक रूप से सैन्य कार्रवाई की तैयारी करने का बहाना दे सकते हैं, साथ ही उन्हें यह कहने की क्षमता भी दे सकते हैं कि ये सब महज एक अभ्यास का हिस्सा है। देखिए, जर्मनों ने ऐतिहासिक रूप से सैन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अचानक हमले का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्लिट्ज़क्रीग को याद कीजिए। यूरोप एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध हो जाएगा, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियार शामिल होंगे, और जरूरी नहीं कि केवल परमाणु हथियार ही हो। वैसे उस किताब में मैंने यह भी लिखा है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनकी नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन उनके कई अनपेक्षित परिणाम भी हुए हैं। खैर, एक दशक से अधिक समय से मैं चेतावनी देता आ रहा हूं कि यूरोप, नाटो या इसी तरह के किसी अभ्यास की आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला कर सकता है। और आप जानते हैं, जब बाइबल दानियल 11:21 में कहती है वह शांतिपूर्वक आएगा और षड्यंत्र से राज्य पर कब्जा कर लेगा, तो यह उस बात से मेल खाता है जिसकी चेतावनी मैं लंबे समय से देता आ रहा हूं। नाटो के साथ विवाद और संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका का नाटो से अलग होना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि यूरोप अभी भी सार्वजनिक रूप से नाटो का समर्थन करता है, लेकिन अंत में यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे नाटो सदस्यों के साथ विश्वासघात करेगा। यूरोपियों को अपनी सेनाओं पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर करके, जैसा कि ओबामा, बाइडेन और ट्रंप प्रशासन ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके ने हवा बोई है और बवंगर काटेंगे। इसलिए मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। यह होशे की पुस्तक में एक भविष्यवाणी है। होशे 8:6 से शुरू होता है, परंतु सामरिया का बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, वे हवा बोते हैं और बवंडर का फल भुगतो। 8:00, इसराइल निगल लिया गया है, अब वे अन्य जातियों के बीच हैं। 9:00, क्योंकि वे अशूर चले गए हैं, पसंद एक जंगली गधा अकेला है, एप्रैम ने प्रेमिकाओं को किराए पर लिया है।
हमें उन आयतों की व्याख्या करके समझाइए।
दरअसल सामरिया का जिक्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में है, और किफ्राइम का जिक्र यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संदर्भ में है। अशूर मध्य यूरोप में स्थित
एक यूरोपीय शक्ति, विशेष रूप से वहां के जर्मनिक लोगों के संदर्भ में है। बाइबल दर्शाती है कि यूरोप को वहां पहुंचने से पहले कम से कम दो बार पुनर्गठन करना होगा। हालांकि कुछ लोग ये नहीं मानते कि यूरोप कभी संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट करना चाहेगा या ऐसा करने में सक्षम है। मैं यशायाह की पुस्तक से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह अध्याय 10 के पद 5 से शुरू होकर हम पढ़ते हैं, अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का दंड और वह लाठी है जिसके हाथ में मेरा रोष है। मैं उसे एक अधर्मी राष्ट्र के विरुद्ध भेजूंगा और अपने क्रोध के लोगों के विरुद्ध मैं उसे आदेश दूंगा कि वह लूट का माल छीन ले, शिकार को पकड़ ले। पद 7, परंतु उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, न ही उसके हृदय में ऐसा विचार है। अतः एक जर्मनिक शक्ति के बारे में बात करते हुए, वह नहीं सोचता कि वह वास्तव में जाकर ऐसा करेगा। पर बाइबल आगे कहती है, परंतु यह है उसके मन में कई राष्ट्रों को नष्ट करने और उनका नाश करने की इच्छा है। वह सामरिया की बात कर रहा है। वह इस क्षेत्र में कई तरह की चीजें करने वाला है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, मैंने जो पशु देखा वह तेंदुए के समान था, उसके पैर तेंदुए के समान थे, पैरों के एक भालू और उसका मुंह शेर के मुंह जैसा। शैतान रूपी अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और महान अधिकार दिया, और मैंने उसका एक सिर देखा मानो वह बुरी तरह घायल हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे उसे मार डाला गया हो, नष्ट कर दिया गया हम। वह अब सैन्य शक्ति नहीं रह सकता, लेकिन लिखा है, और उसका घातक घाव ठीक हो गया और सारी दुनिया चकित रह गई और उस जानवर के पीछे चल पड़ी। इसलिए उन्होंने उस अजगर की पूजा की जिसने उस जानवर को अधिकार दिया था, और उन्होंने उस जानवर की भी पूजा की और कहा, कौन है उस दरिंदे की तरह, उससे युद्ध करने में कौन सक्षम है।
ठीक है, अब हमें उन आयतों की व्याख्या करके दिखाइए।
बाइबल हमें दिखाती है कि एक यूरोपीय शक्ति, जिसे यशाया अध्याय 10 में अश्शूर कहा गया है और दानियल 11 में उत्तर का राजा कहा गया है, शुरू में सैन्यवादी नहीं बनना चाहती, लेकिन अंत में वह विजय प्राप्त करेगी। बाइबल दिखाती है कि दुनिया आश्चर्यचकित होगी। यूरोप के बारे में दुनिया क्यों आश्चर्यचकित होगी? क्योंकि उन्हें यह संभव नहीं लगता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शक्ति पराजित हो सकती है, है ना? फिर भी दानियल 11:93 में बाइबल चेतावनी देती है कि एक यूरोपीय शक्ति सबसे मजबूत किलों की शक्ति को नष्ट कर देगी। वह किला संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। यही कारण होगा कि दुनिया आश्चर्यचकित होगी, स्तब्ध होगी। यह कैसे संभव है? खैर, इस बात की काफी संभावना है कि नाटो का कोई ना कोई स्वरूप बना रहेगा, लेकिन यूरोप नाटो को रूस से बचाव के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके एंग्लो सैक्सन मूल के सहयोगियों के खिलाफ हो जाएगा। अब मैंने विलाप गीत की पुस्तक का जिक्र किया था। मैं विलाप गीत की पुस्तक के पहले और दूसरे पद को पढ़ना चाहता हूँ। पहला पद, शहर कितना अकेला बैठा है, वह थालोगों से भरा हुआ। तो कोई ऐसी जगह जो अत्यधिक आबादी वाली थी, वह विधवा जैसी दिखती है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई। राष्ट्रों में महान कौन था? राष्ट्रों में महान उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 48 पद 19 में, जब याकूब इसराइल यूसुफ के वंशजों को आशीर्वाद दे रहा था, जिनमें से एक का नाम मनश्शे था, तो उसने कहा कि वह राष्ट्रों में महान होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समस्याओं के बावजूद, और ऐसी कई समस्याएं हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रों में महान माना जाता है। कुछ लोग इसे सर्वकालिक महानतम राष्ट्र मानते हैं, लेकिन राष्ट्रों में महान कौन है? पद 1 में आगे कहा गया है, प्रांतों की राजकुमारी दासी बन गई है। ठीक है, दासी, ऐसा तभी होता है जब आप पर विजय प्राप्त की जाती है। ठीक है, हम अपने राजनीतिक नेताओं को यूरोप में दास बनने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना? हम ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है। पद 2, विलाप गीत 1, वह रात में फूट फूट कर रोती है, यह बहुत बुरा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। उसके सभी प्रेमियों, उसके सभी साथियों में से उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। उसके सभी दोस्तों ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसके दोस्त, विश्वासघात, इसका मतलब है कि उन्होंने धोखा दिया, वे उसके दुश्मन बन गए हैं। खैर, जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, तब से दोस्त दुश्मन शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, दोस्तों की बात करें तो वो अब दुश्मन बन रहे हैं। खैर, अमेरिका के महान बनने की भविष्यवाणी की गई थी, और एक महान राष्ट्र अपने ही दोस्तों और सहयोगियों द्वारा नष्ट होने वाला है। नाटो और अमेरिका दोनों का अंत होने वाला है।
क्या आप सचमुच यह सुझाव दे रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य विजय और दासता की भविष्यवाणी की गई है?
जी हाँ, और मैंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। दानियल 11:29 में लिखा है कि सबसे शक्तिशाली शक्ति का नाश एक यूरोपीय शक्ति द्वारा किया जाएगा, और यूरोप सैन्य कदम उठा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे बढ़ावा दे रहा है। और दानियल 11:29 तक 45 यशाया 10 प्रकाशित वाक्य 17 और 13 में दी गई भविष्यवाणियों के अनुसार इसका परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, वैसे कई मुस्लिम देशों के लिए भी नहीं और अंततः स्वयं यूरोप के लिए भी नहीं।
धन्यवाद डॉक्टर थील। डॉक्टर टिलर के साथ और भी साक्षात्कारों के साथ साथ लिखित और ऑडियो लेखों के लिए हमारी वेबसाइट biblenewsprophecy.net पर जाएं। यह स्टीव डुपुई की ओर से बाइबल न्यूज़ प्रोफेसी कार्यक्रम है।